आप सुन रहे हैं हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचडी स्मार्टकास्ट।
हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट हेल्दी जिंदगी सीजन 2 के नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी होस्ट योगिता यादव, एडिटर हेल्थ शॉर्ट्स हिंदी। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर बार आपके लिए वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्दी जिंदगी की राह और आसान बना सकें। इसी वादे के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम।
दोस्तों, कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं। इसमें ढेर सारी रिसर्च हो रही है, इसके बावजूद हम अब तक नहीं जान पाए हैं कि वास्तव में कैंसर होता क्यों है। लेकिन कुछ ऐसे कैंसर कारक रसायन होते हैं जो किसी सेल को कैंसरस बना सकते हैं, जिन्हें कार्सिनोजेंस कहा जाता है। अभी हाल ही में खबर आई कि कुछ भारतीय मसालों में भी कार्सिनोजेंस मौजूद हैं। आखिर ये क्या होते हैं और कैसे आपके शरीर को, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आज हम इन्हीं कार्सिनोजेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत तलवार। डॉक्टर तलवार, स्वागत है आपका हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में।
थैंक यू, नमस्कार।
डॉक्टर विनीत तलवार डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर तलवार का इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है, तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में कार्सिनोजेंस आखिर हैं क्या?
कार्सिनोजेन शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कोई भी चीज जो कैंसर को या तो प्रोत्साहन देती है या कैंसर का एक कारण बन जाती है। तो कोई भी चीज जो शरीर में जाके उसको कंटिन्यूअसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इरिटेट करती रहे, तो शरीर जो है कुछ टाइम तक उसको अपने आप से अडेप्ट करता रहता है, बट एक लेवल आ जाता है जहां पे शरीर जो है थक जाता है और जो कार्सिनोजेन है, जो इरिटेंट है, वो शरीर में अपना प्रकोप दिखा देता है। तो कार्सिनोजेन्स मूलतः दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेन्स और दूसरे होते हैं नॉन जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेन्स। इसमें से जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेन्स वो होते हैं जो शरीर में जाके हमारा जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, उसमें जाके वो रिपेयर कर डैमेज कर देते हैं और मिस रिपेयर स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको म्यूटाजेन्स करार दिया जाता है। म्यूटाजेन्स मतलब कैंसर का पोटेंशियल होना, कैंसर को प्रोत्साहन ही नहीं देना बट कैंसर का एक कारण बन जाना। तो ये जीनोटॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक एमीन्स होते हैं और एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे दो या तीन मैं बता रहा हूँ, वैसे काफी होते हैं और रिसर्च में भी काफी चल रहे हैं। जो नॉन जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेन्स होते हैं, जो शरीर में जाके जेनेटिक डैमेज नहीं करते, उनमें से कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे आमतौर पे जो हम प्लांट्स के ऊपर या फसल के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं घर में जो इंसेक्ट्स मारने के लिए होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जैसे क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो इन सारे में से कोई भी चीज जो है शरीर में अंदर जाके कंटिन्यूअसली उसको तंग करती है, तो शरीर की जब बस हो जाती है तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। तो जीनोटॉक्सिक होते हैं जो जीन्स में जाके असर करते हैं और एक नॉन जीनोटॉक्सिक होते हैं जो अपने वातावरण में या आस पास जो है जो ड्रग्स होती है जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये होते हैं।
सर, आपने दो तरह के कार्सिनोजेन्स बताए, क्या एक लेमैन इनको आइडेंटिफाई कर सकता है, इन्हें पहचान सकता है किसी भी तरीके से?
यस, डेफिनेटली। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम टोबैको का उदाहरण ले, टोबैको जो है हम स्मोक भी कर सकते हैं सिगरेट में, टोबैको को हम चबा भी सकते हैं, टोबैको का हम पेस्ट भी ले सकते हैं। आपको जान के ये हैरानगी होगी कि टोबैको जो है रुपए में 42 पैसे कैंसर कॉज करता है, मतलब 42% ऑफ ऑल कैंसर्स आर कॉज बाय टोबैको। अब आप ऊपर से नीचे जाइए, आप अगर मुंह के अंदर देखते हैं तो ओरल कैंसर कर सकता है, गले में देखते हैं तो साउंड बॉक्स का जो है कैंसर, लैरिंजियल कैंसर कर सकता है, हेड एंड नेक कैंसर्स। थोड़ा सा नीचे जाइए तो फेफड़े का कैंसर होता है, लंग कैंसर, अगर आप उसको स्मोकिंग करें, अगर इनहेल करें, अगर पेस्ट लगाएं मुंह में तो मुंह का कैंसर, इनहेल करें तो फिर छाती का कैंसर। थोड़ा सा और नीचे जाए तो अगर वो उसको आप इंजेस्ट कर लेते हैं एज अ टोबैको पाउडर तो पेट का कैंसर, और थोड़ा नीचे जाए तो पेशाब की थैली जो होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसको वो प्रकोप में ला सकते हैं। तो ऊपर से नीचे तक रुपए में 40 पैसे जो कैंसर के जो कॉज होते हैं वो टोबैको से ही होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, कोई भी चीज अगर आप किसी का अब्यूज करें, यूज नहीं करें, थोड़ी मात्रा में अगर लें, महीने में एक बार ही लें तो शरीर को लाभदायक होता है, बट अगर डेली बेसिस पे एक्सेस में ले लें, ज्यादा ले लें, तो वो अगर स्मोकिंग के साथ होता है तो वो कैंसर का एक और कारण बन सकता है। इसके अलावा जो हमने अभी बात की, पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड जो छिड़कते हैं। मेरा एक पेशेंट था जो कश्मीर से आया था, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि इस बारी फसल कैसी हुई, बोलता है जी बहुत अच्छी हुई। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, पर वो बोलता है कि डॉक्टर साहब हम थोड़ा ना पेस्टिसाइड ज्यादा छिड़कते हैं। अब ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, सब जगह है, जो पेस्टिसाइड की जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है उससे ज्यादा छिड़की जाती है ताकि फसल अच्छी हो, कीड़ा ना लगे, उसको बर्ड्स ना खाएं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो जो एक्सेस जो ड्रग्स होते हैं जो अपने प्रोपोर्शन से ज्यादा यूज होते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं एक बारी शरीर में घुसते हैं तो शरीर के अंदर जाके कंटिन्यूस इरिटेशन करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पेंट फैक्ट्रीज होती हैं या प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल होता है, और वो हाइड्रोकार्बन्स अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई भी व्यक्ति विशेष उसको सूंघता रहे, शरीर में जाता रहे, शरीर में कांस्टेंट इरिटेशन पैदा करता है। बट लॉन्ग टर्म में जाके अगर किसी का आंतरिक शक्ति थोड़ी कम होती है तो वो एक कैंसर में प्रकोप ले सकता है।
डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो फसलों पर डालते हैं कीटनाशक, अब वो तो डाल ही रहे हैं, है ना, एक लेमैन इससे अपने आप को कैसे बचा सकता है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपने जो आटा खाया या आपने जो रोटी खाई उसको उगाने में किसान ने कितना पेस्टिसाइड यूज किया है, कितने कीटनाशक वो लेवल के डाले हैं या लेवल से ऊपर डाले हैं नहीं मालूम है, तो एक लेमैन अपने आप को इन सब चीजों से कैसे बचा सकता है।
देखिए इसमें कहना बड़ा मुश्किल है कि एक्सेस में डाला है या कम डाला है, बट इसके अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, आंतरिक शक्ति। अब उदाहरण के तौर में किसी, आप अगर 10 लोगों के पास जाओ और देखो कि उनको वायरल इन्फेक्शन हुई है, जो कि खांसी जुकाम आजकल आप देखते हो बहुत तादाद में होता है, तो 10 में से 5 में जो होता है वो 2 दिन में ठीक हो जाता है, बाकी जो 5 होते हैं उनमें 4 दिन में ठीक होता है, और कई जो होते हैं उनको कुछ दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसमें जो है इरिटेंट क्या है, वो है वायरस जिसने शरीर में प्रकोप किया है। दूसरी जगह इरिटेंट क्या है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या कोई पेंट फैक्ट्री में केमिकल। अब सेम केमिकल, सेम इंसेक्टिसाइड की मात्रा अगर 10 लोगों को हम एक्सपोज करते हैं, जिसमें जिसकी आंतरिक शक्ति अच्छी होती है वो शरीर से उसको झाड़ देता है, जिसमें आंतरिक शक्ति कम होती है अनफॉर्चुनेटली उसमें फिर ये अपना प्रकोप दिखाते हैं। तो ये ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी जो पेस्टिसाइड्स की है, उसमें हर एक का जो रिस्पॉन्स शरीर का वो अलग होता है, और रिस्पॉन्स के साथ साथ जो होता है प्रकोप होता है।
डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में जो खबर आई उसमें मसालों में कहा गया कि कार्सिनोजेंस हैं। इससे पहले हम ऐसा सुनते थे कि एल्युमिनियम के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कार्सिनोजेंस हो सकते हैं उसमें, या अगर आप धूप में बहुत ज्यादा देर रहेंगे तो वो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आपको स्किन कैंसर दे सकती हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं जो हर व्यक्ति जिनके टच में आता है, हर व्यक्ति की डे टू डे लाइफ को जो अफेक्ट करती हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं?
देखिए, कई हैवी मेटल्स होते हैं जैसे आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये जो है इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और माइक्रो टॉक्सिन्स भी बोलते हैं। अगर लेवल के ऊपर चले जाएं तो टॉक्सिन हो जाते हैं, लेवल के नीचे होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट सिंस द वॉल्यूम इज वेरी लेस तो इसके अंदर हम बता नहीं सकते कि ये शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते। तो बाहर जो टेस्टिंग की गई थी वहां ये जाना गया था कि इनकी जो मात्रा थी, जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू होती है, 2 की जो वैल्यू होती है, उससे ज्यादा थी। अब उसके ऊपर जांच करी जा रही है कि वाकई में ये वैल्यू ज्यादा थी या नहीं थी। बट देन अगेन, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं या ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये इरिटेंट्स होते हैं शरीर के लिए। जितना लंबा एक्सपोजर होता है इससे उतना ही ज्यादा नुकसान होता है, और जितनी ज्यादा मात्रा होती है उतना ज्यादा नुकसान होता है। तो वन इज द लेंथ ऑफ एक्सपोजर, अगर ज्यादा एक्सपोजर है तब नुकसान है, एंड द अदर इज द क्वांटिटी, अगर ज्यादा क्वांटिटी है इवन छोटे टाइम के लिए है वो भी नुकसान करेगी। तो इसके दो पहलू हैं, दोनों को जो है आंका जाता है और उसके हिसाब से हम विश्लेषण करते हैं।
सर, मैंने पूछा कि क्या वास्तव में एल्युमिनियम के बर्तन यूज करने से कैंसर हो सकता है, ये फैक्ट है या मिथ है, इसका कोई आधार है हमारे पास?
देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मिथ्स हैं कि आजकल एक मिथ है कि अगर आप चीनी खाते हो तो चीनी से कैंसर होता है। उसका कारण ये बताया जाता है कि चीनी जो है आप भी खाते हो आपका कैंसर भी खाता है और वो भी बढ़ता है। आई थिंक वास्तव में ये एक मिथ्या है। अगर ये सच होता तो जो भी शुगर खा रहा है सबको कैंसर हो जाता। सिमिलरली प्रेशर कुकर जो इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि भारतवर्ष में रुपए में 80 पैसे में किचन में प्रेशर कुकर इस्तेमाल होता है और वो एल्युमिनियम का होता है। अगर एल्युमिनियम से होना होता तो सबको कैंसर हो गया होता अभी तक। सो आई थिंक दिस इज अ मिथ। बट डेफिनेटली कोई भी चीज अगर बहुतायत में हो, अपने जो प्रिस्क्राइब्ड लेवल है उससे ज्यादा हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। एक और विषय पे मैं टच करना चाहता था जो कि वायरसेस होती हैं। देर आर सर्टन कैंसर्स विच आर कॉज बाय वायरसेस ऑल्सो। इसमें से एक है जो हेपेटाइटिस बी होता है और हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। अपने में ये पीलिया कॉज करता है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये देखा गया है कि किसी को भी हेपेटाइटिस होता है वो पीला पड़ जाता है, भूख कम हो जाती है, बट अराउंड 2-3 हफ्ते में पीलिया डाउन होने लगता है, अपनी आंतरिक शक्ति ऊपर आ जाती है और शरीर से वो हेपेटाइटिस वायरस को निकाल देता है। बट लॉन्ग टर्म किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी चलता रहे, लॉन्ग टर्म इरिटेशन करता रहे, वो लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। सिमिलरली एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करता है लेडीज को, सर्विक्स जो सर्वाइकल कैंसर है उसको कॉज करता है। तो जब भी किसी को ये इन्फेक्ट करता है, किसी व्यक्ति विशेष को, लेडी को, उस टाइम से कैंसर कॉज करने में कम से कम 15 साल के आसपास टाइम होता है, 10 या 15 साल। तो शरीर में वो वायरस कंटिन्यूस इरिटेशन करता रहता है। काफी लोग जो है उसको शरीर से शेड आउट कर देते हैं, उनका जो इनेट इम्यूनिटी है, आंतरिक शक्ति है, ज्यादा होती है, वो शरीर से साफ कर देते हैं। जिनमें रह जाता है और लंबे टाइम तक चलता है वो सर्वाइकल कैंसर में प्रवृत्त हो जाता है। तो वायरसेस भी जो हैं केमिकल के साथ साथ हैवी मेटल्स के साथ साथ एक कारण होता है कैंसर का।
सर बार बार जब हम बात कर रहे हैं ना कि इरिटेंट्स होते हैं, बॉडी को इरिटेट करते हैं, क्या कोई साइन है जिसको जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसा प्रवेश किया है जो आगे चल के कैंसर का कारण बन सकता है?
नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये जो सारा होता है दिस इज इन द मॉलिक्यूलर लेवल। जब ये फिजिकली आप उसको जब पेशेंट को प्रतीत होता है तब तक जो है कैंसर में वो चेंज हो चुका होता है। कोई भी एलर्जन जो होता है बॉडी में पहले जो होता है अंदर जाके इरिटेशन करता है, सेलुलर जो डीएनए है वो डैमेज करता है, वो डीएनए की जो एबनॉर्मल डीएनए होता है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। 70-80% में वो जो एबनॉर्मल डीएनए है जो बॉडी के अपने नॉर्मल इम्यून चैनल होते हैं उससे वो खत्म हो जाते हैं और शरीर से बाहर चले जाते हैं। 10-20% में वो जो डीएनए डैमेज हो जाता है वो आगे जो है प्रोग्रेस करता जाता है, उसको बोलते हैं कार्सिनोजेन प्रोमोशन। और एक बार ये प्रमोशन हो जाती है, सेल्स बन जाते हैं, एक क्रिटिकल मास पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। तो जैसा कि मैं बता रहा था सर्वाइकल कैंसर में ये जो है फ्रॉम इनिशिएशन टू प्रमोशन टू कार्सिनोजेनेसिस जो है ये टाइम अबाउट 10 से 15 साल होता है। तो इसका आंकलन करना कोई ऐसा मीटर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि ये जो है शरीर में घुस गया है और शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
यानी अब सिर्फ उपचार हो सकता है, बचाव के तो तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे, है ना?
नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इतना भी भयभीत नहीं होना। मैंने जैसे बताया कि 40% कैंसर जो होते हैं स्मोकिंग से होते हैं, आप स्मोकिंग छोड़ दो तो 40% तो अपने हाथ में आ गए, पहली बात। दूसरा लाइफस्टाइल जो होता है उसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं। आजकल जो है, आजकल मैं दूसरों के बारे में क्या बात करूं, अपने बारे में हम जो अंग्रेजी में बोलते हैं वी आर काउच पोटेटोज, सवेरे से शाम तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं, और हम सबको बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। तो डेली एक्सरसाइज जो है 15-20 मिनट वॉक्स जो है वो जरूरी है। खाना हम खाते हैं, हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड्स, हम बोलते हैं न्यूट्रिशियस डाइट, बट वी नेवर ऐड अ राइडर टू इट विच इज टाइमली इनटेक ऑफ फूड। सवेरे हम ब्रेकफास्ट करेंगे भागते भागते 7 बजे, फिर लंच जो है कभी 1 बजे कर रहे हैं, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी कर भी नहीं रहे। तो ये चीजें जो है ये दिस इज अ टॉल ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है जो कि 50 साल तक तो शरीर झेल लेता है, उसके बाद ये धीरे धीरे दिखने लगता है, देन द पर्सन रियलाइजेस कि हाँ भाई अब शरीर में थकान आ रही है। तो अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस हम थोड़े से ट्यून कर लें, इनको थोड़ा ठीक कर लें, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें, जो चीजें हमें पता है जिससे दिक्कत हो सकती है, तो आई थिंक लाइफ विल बी अ वेरी बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस।
Is it possible कि किसी बर्तन में खाना पक रहा है तो उसका मेटल आपके बॉडी में आ जाएगा?
Oh yes, definitely.
Oh really?
It always goes.
Okay. I mean,
आप मेटल से मेटल को स्क्रैच कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर जाता ही है।
Okay. मतलब डर है?
मैं आपको और डराऊं?
हाँ, बिल्कुल।
अब ये जो प्लास्टिक बॉटल्स आप यूज करते हो, you should never use your water bottles for more than 2 or 3 months. You should change it. Uska karan ye hai ki usme aap dekhoge white lines aa jate hain, they are micro cracks. And these micro cracks lead to the dispersion of microplastics into the water. So microplastics jo the chote chote uske particles hote, you drink it and that creates irritation in the stomach.
Sir, thoda sa upchar ke bare mein bhi bataiye ki क्या साइंस हो सकते हैं, कब हमें उपचार के लिए किससे बात करनी चाहिए?
See, this is another very tough question. उपचार तभी होगा ना जब डिटेक्शन होगा। अब अनफॉर्चुनेटली कैंसर में कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता जिससे बोल दें कि यस इसको ये सिम्टम है तो ये कैंसर होगा. दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट, क्योंकि इन्फेक्शन में, ट्यूबरक्लोसिस में और कैंसर में, तीनों में सिम्टम सेम ही होते हैं. सपोज किसी को फेफड़े का कैंसर है, उसको भी खांसी होगी, किसी को टीबी है उसको भी खांसी होगी, किसी को इन्फेक्शन है उसको भी खांसी होगी. बट ये शुरुआत में कह देना कि यस आपको कैंसर है, आपको इन्फेक्शन है, ये बहुत मुश्किल होता है. तो इसमें हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑफ सस्पिशन. सपोज आपको खांसी होती है और आपको बुखार होता है, तो पहले आप साधारण फिजिशियन के पास जाएंगे, साधारण दवाइयां लेंगे, साधारण उपचार करेंगे. अगर आपको लगता है कि 3-4 हफ्ते आपने उपचार कर लिया उसके बावजूद बीमारी वहीं की वहीं है या बीमारी बढ़ रही है, देन देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, क्या ये और कोई चीज तो नहीं है इन्फेक्शन या टीबी के अलावा. तो कोई भी चीज अगर 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट करती है और ट्रीटमेंट लेने के बावजूद जो है ये बढ़ती जाती है, जैसे आपने सुने होंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर, एक्सेसिव ब्लीडिंग, लंप इन द बॉडी, ऑल्टरेशंस इन द बाउल हैबिट्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ब्लड इन यूरिन, अनएक्सप्लेन्ड फीवर. सो ये कोई भी प्रॉब्लम्स हैं अगर 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा चलते रहते हैं, ठीक नहीं होते या बिगड़ते रहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए और तुरंत हमें हायर एंड इन्वेस्टिगेशंस पे जाना चाहिए. एक्सरे से सीटी स्कैन पे जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड से एमआरआई पे जाना चाहिए. तो इन चीजों को करना चाहिए और जहां पे भी हमें लगे कि गांठ है या कोई अनआइडेंटिफाइड स्पॉट है जो कि नॉर्मल बॉडी में नहीं होता, उस कंडीशन में हमें उसकी बायोप्सी लेनी चाहिए और इमीडिएटली उसका निदान करना चाहिए. तो ये स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हमें आना चाहिए 2 या 3 हफ्ते का उपचार करने के बाद.
थैंक यू सो मच डॉक्टर विनीत तलवार, आपने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा की. कम से कम वो डर थोड़ा कम हुआ जो एकदम से बढ़ गया था कि कुछ भी खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, कुछ भी इनहेल करेंगे तो कैंसर हो जाएगा. आप हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में आए, आपने हमारे साथ इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू, धन्यवाद.
ये था हमारा आज का एपिसोड. इसे प्रोड्यूस किया था श्रुति पाल ने और एडिट किया था संजू अब्राहम ने. आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं yogita.yadav@hindustantimes.com पर. हेल्दी जिंदगी सीजन 2 पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ, क्योंकि पहला धन निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ.
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HDSmartcast. हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com.